नमस्कार भारत, तारीख 2 मई, दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दाश। फेसबुक ने यूजर्स की निष्ठा से जुड़ी नई योजनाओं की घोषणा की।
What happened with Cambridge Analytica was a major breach of trust. So we need to make sure that this never happens again.
भारत और पाकिस्तान के बीच फिर शुरू हुई ट्रैक टू डिप्लोमेसी।
अगर गवर्नमेंट स्तर पे कुछ हल नहीं निकल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ट्रैक टू से कोई हल निकल सकता है।
2017 की सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए जम्मू कश्मीर के 15 उम्मीदवार, करेंगे बात फजलूल हसीब से।
जब नाकाम भी हो रहा था तो बस यही बात याद कर रहा था कि चूंकि ये ग्रोथ बहुत बड़ा है तो फेल होना तो एक लाजम की बात है, ये कोई आसानी से मिलने वाली चीज तो है नहीं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। फेसबुक अपने यूजर्स को अब ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने की सुविधा देने जा रहा है। मंगलवार को फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने निजता संबंधी नई योजनाओं की घोषणा की। कैलिफोर्निया में आयोजित फेसबुक की सालाना कॉन्फ्रेंस में जुकरबर्ग ने कहा कि वह बेहतर साथी तलाशने के लिए फेसबुक के जरिए डेटिंग सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस डेटिंग सर्विस का मकसद लंबे वक्त तक चलने वाले रिश्ते बनाना होगा। आर्मेनिया में विपक्ष के नेता निकोल पाशियान ने हड़ताल करने की घोषणा की है। दरअसल सत्ता पर काबिज रिपब्लिकन पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए हुए चुनाव में निकोल के विपक्ष में वोट डाला। निकोल पाशियान पूरा दिन संसद में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जवाब देते रहे, लेकिन बाद में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने उनके खिलाफ ही वोटिंग की। इसके चलते निकोल को प्रधानमंत्री पद के लिए जरूरी वोटों से 8 वोट कम मिले। वोटिंग के बाद निकोल पाशियान के समर्थक जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। राजधानी येरेवन में एक प्रदर्शनकारी ने कहा,
народ вообще-то, ну, расстроение есть вообще-то, но это не конец, это только начало.
लोग इस नतीजे से दुखी हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। सभी लोग एकजुट होंगे, बहुत से लोग हमारे साथ आ रहे हैं। निकोल ने बताया है कि इतने लोग इकट्ठा होने वाले हैं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। हम जरूर जीतेंगे, हम तो वैसे भी जीत चुके हैं। ये थे निकोल पाशियान के एक समर्थक के शब्द। मध्य अफ्रीका में एक चर्च पर हुए हमले में एक संत सहित 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी बैनगुई में हथियारबंद कुछ लोग चर्च में दाखिल हुए और उन्होंने वहां गोलीबारी करनी शुरू कर दी, साथ ही ग्रेनेड फेंक कर हमला भी किया। हमले में मारे गए संत के शव को लेकर एक भीड़ ने राष्ट्रपति के विरोध में नारेबाजी की। एक चश्मदीद ने हमले के बारे में कुछ इस तरह बताया। हम चर्च में मौजूद थे जब चारों तरफ भगदड़ होने लगी, वे ग्रेनेड फेंक कर भी हमला कर रहे थे। चर्च में मेरी एक बहन के पैर पर गोली लगी, कई लोग वहां घायल मौजूद थे। ये थे एक चश्मदीद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के नए गृह मंत्री माइक पोम्पियो ने भरोसा दिलाया है कि वो देश के राजनयिक वर्ग को दोबारा पहले जैसे रुतबे में लाने की दिशा में काम करेंगे। अपने दफ्तर के पहले दिन गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका के राजनयिक दुनिया के हर एक कोने में देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके भीतर पहले जैसा भरोसा बनाए रखना जरूरी है। हाल में ऐसी खबरें आई थीं कि ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत गृह मंत्रालय का काम बहुत प्रभावित हुआ, जिसके चलते कई वरिष्ठ राजनयिकों को निकाल दिया गया और नए स्टाफ की भर्ती रोक दी गई। साथ ही विदेश नीति के मोर्चे पर कई राजनयिकों ने खुद को अलग थलग किए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी राज्य एडमावा में एक मस्जिद में हुए हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है। इस मस्जिद पर मंगलवार को 2 आत्मघाती हमलावरों ने उस वक्त धमाका किया जब लोग दोपहर की प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे। पहले हमलावर ने खुद को मस्जिद के भीतर धमाके से उड़ाया, उसके कुछ देर बाद ही दूसरा धमाका तब हुआ जब लोग खुद को बचाने के लिए इमारत के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका में बॉर्डर के पास निगरानी करने वाले कुछ एजेंटों ने बताया है कि उन्हें एक बैग में बेहोशी की हालत में एक बाघ का बच्चा मिला है। यह बैग अवैध प्रवासियों का बताया जा रहा है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि ये लोग मैक्सिको से टेक्सास की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे जब बॉर्डर एजेंटों ने उन्हें रोक दिया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। देश में लाखों लोगों के लिए आज फेसबुक दूसरों से जुड़ने का अहम जरिया बन गया है। लोग इस पर अपने विचार साझा करते हैं, दूसरों से संपर्क बनाए रखते हैं और इस पर खबरें भी पढ़ते हैं। लेकिन हाल में इसे लेकर खासकर फेसबुक में यूजर्स की निजता यानी प्रिवेसी को लेकर चिंता जताई जाने लगी और इस तरह के आरोप लगाए गए कि यूजर्स का फेसबुक डेटा अन्य कंपनियों के साथ साझा किया जा रहा है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने अब से कुछ घंटों पहले यूजर्स की निजता को बनाए रखने, चुनावों में फेसबुक के जरिए गलत खबरें फैलाने पर रोक लगाने के लिए अपनी नई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंस्टाग्राम पर अब वीडियो चैट और फेसबुक मैसेंजर में नए चैट फिल्टर्स शामिल किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि फेसबुक जल्द ही ऐसी सेवा शुरू करने जा रहा है जिसके जरिए फेसबुक यूजर्स अपने लिए बेहतर साथी चुन सकेंगे। और क्या क्या घोषणा की मार्क जकरबर्ग ने, सुनिए नवीन नेगी की रिपोर्ट में।
आने वाले वक्त में फेसबुक अपने यूजर्स को ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने की सुविधा देने जा रहा है। फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने मंगलवार देर रात इसकी घोषणा की। कैलिफोर्निया में आयोजित कंपनी की सालाना कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक पर पुरानी हिस्ट्री को डिलीट करने वाले टूल का नाम क्लियर हिस्ट्री होगा। जकरबर्ग ने कहा,
इट्स अ सिंपल कंट्रोल वेयर यू कैन क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, व्हाट यू क्लिक्ड ऑन, द वेबसाइट्स यू विजिटेड एंड सो ऑन, एंड वी आर गोना कॉल इट क्लियर हिस्ट्री।
यह बहुत ही आसान सा स्टेप होगा जिसके जरिए आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर सकेंगे। आपने किन लिंक्स को क्लिक किया, कौन सी वेबसाइट को विजिट किया आदि जानकारियां आप क्लियर हिस्ट्री के जरिए हटा सकेंगे। बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की थी, फेसबुक पर विज्ञापन और अन्य टूल्स के जरिए जिन वेबसाइट्स और ऐप्स को आप देखते हैं उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार डिलीट कर सकेंगे, और अगर आप उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्लियर हिस्ट्री को टर्न ऑफ करके सुरक्षित भी रख सकते हैं। हाल के दिनों में फेसबुक पर अपने यूजर्स का डेटा किसी अन्य कंपनी को बेचने का मामला सामने आया था। फेसबुक पर उसके करोड़ों यूजर्स की निजी जानकारियां राजनीतिक लाभ के मद्देनजर कैम्ब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी को बेचने के आरोप लगे थे। जकरबर्ग ने मंगलवार को कहा कि आने वाले वक्त में इस तरह की गड़बड़ियां दोबारा ना हों, इसके लिए फेसबुक बहुत से एहतियाती कदम उठाने जा रहा है। जकरबर्ग ने कहा,
What happened with Cambridge Analytica was a major breach of trust. An app developer took data that people had shared with them and sold it.
कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ जो हुआ वह विश्वास तोड़ने जैसी घटना थी। एक ऐप डेवलपर लोगों के उस डेटा को बेच देता है जो लोगों ने उसके साथ साझा किया। हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में दोबारा ऐसा कभी ना हो, इसलिए हम बहुत से कदम उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेवलपर्स को लोगों से उनका डेटा मांगने पर रोक लगा रहे हैं। दूसरा, हम उन कमियों को तलाश रहे हैं जो डेटा सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। इसके लिए हम अपने हर उस ऐप की जांच कर रहे हैं जिसके पास साल 2014 के दौरान लोगों की बहुत सी जानकारियां थी, और अगर हमें इनमें से किसी पर ज़रा सा भी शक हुआ तो हम उसकी स्वतंत्र जांच करवाएंगे। अगर किसी के डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ तो हम उस ऐप डेवलपर को बैन कर देंगे। फेसबुक से डेटा चोरी होने के संबंध में जकरबर्ग को अमरीकी सीनेट के सामने भी पेश होना पड़ा था। जकरबर्ग ने फेसबुक के कई उत्पादों के बारे में भी जानकारियां दी।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी की यानी दोनों देशों के पूर्व राजनयिकों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के बीच गैर सरकारी स्तर पर बातचीत फिर से शुरू होने की खबर है। इस सिलसिले में भारत से एक प्रतिनिधिमंडल इसी हफ्ते पाकिस्तान गया था। इसमें भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल को भी शरीक होना था, लेकिन वो इसमें नहीं जा सके। बीबीसी संवाददाता सुहेल हलीम ने कंवल सिब्बल से बात की और सबसे पहले पूछा कि दोनों देशों के बीच इतनी तलखी के माहौल में अचानक ट्रैक टू डिप्लोमेसी की दोबारा शुरुआत आखिर कैसे संभव हो सकी।
3-4 महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से इशारा आया कि हम तैयार हैं आपकी डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए, तो फिर हमारी तरफ से डिसीजन लेने की बात आ गई कि भाई जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। नॉन गवर्नमेंट है बिल्कुल, लेकिन दो देश की रिलेशन ऐसे हैं कि नॉन गवर्नमेंट लेवल पे भी लोग चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे गवर्नमेंट को किसी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो। तो फिर हमारी तरफ से ऐसा लगता है कि जिन्होंने आदेश देना था उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप तो अगर जाना चाहते तो चाहिए।
मतलब ये कि अगर ये डेलीगेशन गया है तो जाहिर है कि हुकूमत की मर्जी से ही गया होगा।
वैसे तो ये मर्जी के खिलाफ ही जा सकता था, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मर्जी के खिलाफ जाने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जो थर्ड पार्टी इसको फाइनेंस करती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो हुकूमत तैयार हो ना हो, चाहे ना हो ना चाहे, वो बड़ा रेलिवेंट नहीं रहता। लेकिन अगर आप किसी किस्म की सपोर्ट कंट्री के विदिन ही लेना चाहते हो तो फिर तो लगता है कि भाई गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।
अच्छा, मौजूदा हालात में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की कितनी अहमियत या उसका फायदा क्या है, क्योंकि जब दोनों मुल्क बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है तो इस तरह के डेलीगेशन के जाने से क्या हासिल हो सकता है?
पिछले कई सालों से डेलीगेशन आते जाते रहे हैं लेकिन कभी प्रेस में ये बात नहीं उठी। इस दफे किसी ने प्रेस से बात कर दिया, अब ये एक मुद्दा बन गया है और हर किस्म की इंटरप्रिटेशन दी जा सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि जो हमारे दो एनएसएस हैं दोनों तरफ दोनों देशों के, वो भी बात कर रहे हैं, वो भी मिलते हैं, तो अगर वो मिल सकते हैं तो अगर कोई वेल विशर्स हैं दोनों तरफ से वो भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्तर पे कुछ हल नहीं निकल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ट्रैक टू से कोई हल निकल सकता है। लेकिन इतना है कि जो बातचीत होगी दोनों तरफ के जो हैं डेलीगेशन वो अपनी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देंगे, भाई देखिए ये हमारी बात हुई है, तो ये एक किस्म की इनपुट है, लेकिन इससे ज्यादा तो कोई खास तो इसका महत्व नहीं है।
इस डेलीगेशन में आपको भी शरीक होना था, आपको भी जाना था, लेकिन आप गए नहीं, उसकी क्या वजह थी?
दो वजह थी। एक तो मैं समझता हूँ कि इस समय पाकिस्तान में कोई इस किस्म की स्टेबल गवर्नमेंट तो है नहीं है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन आने वाली हैं, तो अगर कोई किसी किस्म की रिकमेंडेशन भी हो तो पाकिस्तान की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो इस किस्म की रिकमेंडेशन को अपना सकती है। दूसरा, ज्यादा फ्लाइट्स उन्होंने बंद कर दी हैं। तो इन्होंने अब ये अमृतसर जा रहे हैं, फिर अमृतसर से ये वाघा जाएंगे, फिर वाघा से बस लाहौर जाएंगे, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ कर इस्लामाबाद जाएंगे। तो इतनी गर्मी में इतना कष्ट करना, मुझे तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इस किस्म की इनकन्वीनियंस को लूं, जबकि मैं समझता हूं कि इसमें कोई खास नतीजा निकलने वाला नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से ज्यादा बात तो यही थी।
आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और शायद अभी माहौल ज्यादा साजगार नहीं है बातचीत के लिए। इलेक्शन के बाद क्या मोदी हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली आ सकती है?
हो भी सकता है, क्योंकि मोदी की पर्सनैलिटी ऐसी है, इनकी थिंकिंग ऐसी है, ये रिस्क भी ले सकते हैं। जैसे आप चीन में चले गए सडनली शी जिनपिंग से बात करने के लिए, जबकि रिलेशंस में अड़कनी आई हैं और डिफिकल्टीज आई हैं, इसलिए ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन जब तक ये टेररिज्म का मुद्दा कंट्रोल में नहीं आएगा और पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं आएंगे कि भाई ये टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहते हैं वाकई, तो मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो सिग्नल वहां से आ रहे हैं वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। अब ये हाफिज साइड को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज को पॉलिटिकल प्रोसेस में लाना चाहते हैं। अब वो प्रोसिक्यूटर जनरल था, उसको निकाल दिया ये जो मुंबई अटैक्स के बारे में। जब तक ये चलता रहेगा तो मुश्किल होगा।
भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल से बात कर रहे थे बीबीसी उर्दू संवाददाता सुहेल हलीम। अब रुख करते हैं दक्षिणी राज्य कर्नाटक का, जहां विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को उनके वार पर पलटवार करने के लिए भाजपा के ही पुराने सहयोगियों का साथ मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रदेश के विशेष दर्जे को लेकर मोदी पर निशाना साध रहे हैं और कर्नाटका के वोटरों से कह रहे हैं कि वो भाजपा का समर्थन न करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी भाजपा विरोधी दलों की बैठकों में सक्रिय हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी अभियान में कांग्रेस और खासकर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर जमकर बरसे हैं। उसके फौरन बाद सिद्धरामैया ने एक लंबा सा बयान दिया जिसमें उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ा लोगों के बीच अटूट भाईचारे के रिश्तों के बारे में बात की। उन्होंने तेलुगु भाषा बोलने वालों से ये अपील की कि वो बीजेपी को दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव करने के लिए सबक सिखाएं। सिद्धरामैया ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने के बारे में कांग्रेस ने ही वादा किया था, जिस पर बीजेपी की केंद्र सरकार ने धोखा दिया है। सिद्धरामैया का बयान उस समय आ रहा है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में कहा कि कर्नाटका के तेलुगु में बात करने वाले लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करें तो इसका क्या परिणाम होगा, खासकर उन इलाकों में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा से सटे जिलों में हैं। बल्लारी की खम्मा जाति संघा के अध्यक्ष अनूप कुमार मुंडलूर ने बीबीसी को बताया,
अन्याय अन्याय आंध्र प्रदेश
लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया है, उसके साथ आम लोगों में भी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। चंद्रबाबू नायडू के बयान का असर तो पड़ेगा ही, और उसके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के तरफ से भी बीजेपी के खिलाफ उसी तरह का बयान आया है। ये थे अनूप कुमार मुंडलूर के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण राज्यों के राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ पिछले 4 साल से गठबंधन में थे या जिनकी बीजेपी से दोस्ती थी, वो दल अभी अपना रुख बदल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक किंग सुकनाग बताते हैं,
ये बीजेपी को एक नॉर्थ इंडियन पार्टी माना जा रहा है और साउथ इंडिया में ज्यादा इनकी कोई चलती नहीं है क्योंकि ये कल्चर के साथ मिक्स नहीं करता। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो बीजेपी का कोई ज्यादा प्रेजेंस भी नहीं है, केरला में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, कर्नाटक में प्रेजेंस है, परंतु ये कितने चलेगी ये पता चलेगा इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही, क्योंकि इनकी जो कल्चरल इडियम है वो नॉर्थ इंडियनिश है, उनका जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, जो हिंदी प्रचलित नहीं है दक्षिण भारतीय प्रदेशों में।
किंग सुकनाग कहते हैं कि अभी जो भी हो रहा है वो सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तेवर है। कर्नाटका के महत्वपूर्ण चुनाव के बाद राजनीतिक तौर से कई अहम कदम उठाए जा सकते हैं। उसी की तैयारी में आज सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से गठबंधन की बात करने हैदराबाद पहुंच रहे हैं। पिछले हफ्ते चंद्रशेखर राव ने चेन्नई में डीएमके के नेताओं से बातचीत की, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन में ही रहेंगे। अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव क्या कहते हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
यूपीएससी की साल 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में इस बार जम्मू कश्मीर के 15 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इनमें श्रीनगर के फजलुल हसीब ने सबसे ऊंची रैंक हासिल की है। उन्हें देशभर में रैंकिंग में 36वां स्थान मिला है, लेकिन हसीब के लिए राह आसान नहीं थी। मुश्किलों से आगे निकलकर कैसे उन्होंने कामयाबी की मिसाल कायम की, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट में।
बीते सालों के मुकाबलों में इस साल की संख्या थोड़ी ज्यादा है। वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर से कुल 14 उम्मीदवार कामयाब हो गए थे। इस साल सफल हुए उम्मीदवारों में 2 युवतियां भी शामिल हैं। बीते साल आए परिणामों में जम्मू कश्मीर के बिलाल मुहिदीन भट्ट ने देश भर में 10वीं रैंक हासिल की थी। 26 साल के फजलुल हसीब के लिए सिविल सेवा के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ना कोई आसान काम नहीं था। हसीब कहते हैं,
क्योंकि मैं गोल जो था वो बहुत बड़ा था, तो मैं हमेशा इस बात का एहसास था कि गोल तो बहुत बड़ा है, तो जब नाकाम भी हो रहा था तो बस यही बात याद कर रहा था कि चूंकि ये गोल बहुत बड़ा है तो फेल होना तो एक लाजम सी बात है, ये कोई ये आसानी से मिलने वाली चीज तो है नहीं। तो यही सोचकर मैं कंटिन्यू पढ़ रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, और क्योंकि मुझे मेहनत में भी भरोसा, मैं सोच रहा था कि पढ़ रहा हूँ और नॉलेज एक्यूमुलेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसका वापस तो मिलेगा ही।
ये पूछने पर कि आईएएस बनने का ख्याल कहां से आया और उन्हें किन से परीना मिली, तो वो अपने पिता का नाम लेते हैं।
जब मेरे फादर कॉलेज टीचर थे पहले, और उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ वक्त के लिए गए, तो वहां से मैंने अपने वालिद को काम करते हुए देखा, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाके बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, तो वहां से मुझे ये ख्याल फिर शुरू हुआ, और उसके बाद मेरे फादर का खुद भी एक ड्रीम था।
हसीब वर्ष 2014 में दिल्ली आए थे। उन्होंने स्कूली शिक्षा श्रीनगर के बरनहाल स्कूल से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने जम्मू के माइट कॉलेज से इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। हसीब ने विकल्प विषय के रूप में उर्दू को चुना था। उन्होंने बचपन में उर्दू के कई मशहूर शायरों और लेखकों को पढ़ा था जो सिविल सेवा परीक्षा में उनके काम आए।
मैं गालिब को पढ़ता रहता था बीच बीच में, कभी कभार मैं साइंस का मुताला किया करता था कभी कभी, और इसके अलावा कभी कभी फिराक गोरखपुरी की गुले नगमा वगैरह को भी मैं देखा करता था। तो इन चीजों में मतलब एक सेटिस्फेक्शन सा रहता था इनको पढ़ के। तो उसने भी एक पुश दिया कि चलो जी ठीक है, मैं ऑलरेडी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में, थोड़ा पढ़ रहा हूँ। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि चलो उर्दू लिटरेचर ही लें।
हसीब का मानना है कि शिक्षा एक बुनियादी जरूरत है जो समाज के विकास के लिए जरूरी है। सिविल सेवा परीक्षा में हसीब का इंटरव्यू करीब 35 मिनट का हुआ था।
उन्होंने कई सवाल पूछे। एक सवाल उन्होंने पूछा कि आपको लगता है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है कि हमें यूज ही नहीं करने आते? How was Doklam incursion different from other incursions? Rise of Trump for the world. Trump ने जो aid बंद कर दिया पाकिस्तान को, इसे Indo-Pak relations कैसे affect हो गई हैं? Apart from that, उन्होंने पूछा कि Penguin India has published your love story. What was that love story about?
कश्मीर के बच्चे जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं के लिए हसीब ने ये सलाह दी है कि बच्चे पहले सिविल सेवा को समझे कि उसकी परीक्षा कैसे होती है। उन्होंने ये भी सलाह दी है कि ऐसे बच्चे पहले उन लोगों से मिले जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया हो। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
2017 की सिविल सेवा परीक्षा में 51 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में इसे मोदी सरकार की नीतियों का असर बताया है।
इस बार आजादी के बाद से सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज और विशेष तौर से मुस्लिम समाज, लगभग 52 नौजवान यूपीएससी में चुने गए हैं। हम मानते हैं कि इनके अंदर प्रतिभा पहले भी थी, आज भी थी। उस प्रतिभा को सम्मान, उस प्रतिभा का को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के उसका प्रमोशन, ये महत्वपूर्ण था। और इसी का नतीजा है कि आज आज़ादी के बाद से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोग यूपीएससी में चुने गए हैं।
सिविल सेवा में चुने गए 990 लोगों में 51 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, यानी कुल चयनित लोगों में से 5.15% मुस्लिम समुदाय से हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मुसलमानों की आबादी करीब 14% से ज्यादा है। ऐसे में सिविल सेवा में चुने गए मुसलमानों का ये आंकड़ा कितनी बड़ी कामयाबी है, और जैसा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, क्या ये वाकई सरकार की नीतियों का असर है? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने पूर्व आईएएस अधिकारी सिराज हुसैन से यही सवाल किया।
देखिए, ये कोई बहुत फख्र की बात नहीं है कि आबादी में आपका तनासुब 14% हो और आप सिविल सर्विसेज के इम्तहान में 5% में बहुत खुश हों। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई बहुत खुश होने की बात है, लेकिन बहरहाल पहले के मुकाबले में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो रही है। पिछले साल भी 51 बच्चे सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए थे। ये थोड़ा मैं कहूँगा गैर जिम्मेदाराना बात है कि किसी गवर्नमेंट से उसको हम ताबीर दें कि उसके एफर्ट से ये हुआ, क्योंकि ये तो बच्चों की मेहनत होती है। देखिए, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं भी ज़कात फाउंडेशन के साथ सिविल सर्विसेज की कोचिंग में थोड़ी सी मदद करता हूँ, लेकिन कोई भी इसका क्रेडिट नहीं ले सकता सिवाय उन बच्चों के जिनकी मेहनत से वो इस मुश्किल इम्तहान में सेलेक्ट होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मुस्लिम्स में नई अवेयरनेस है, बच्चे इम्तहान देना चाहते हैं, और सबसे जो बात काबिल तारीफ है वो ये है कि गरीब घरों के बच्चे और वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस के बच्चे, मदरसों के बच्चे इस इम्तहान की तरफ रुजू हो रहे हैं और मेहनत करते हैं, कई कई साल मेहनत करते हैं तब उनका सिलेक्शन होता है। तो गवर्नमेंट को इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। यूपीएससी एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा है जिसके इम्तहान पे अभी तक कोई शक को शुबा नहीं है। इस तरह की बातें करने से हम उसको भी शक के दायरे में लाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
लेकिन दिक्कतें क्या है कि आबादी के लिहाज से आखिर क्यों नहीं मुसलमान निकल पाते हैं इस तरह के एग्जाम में?
ये तो एक बहुत मुश्किल, मुल्क के सबसे मुश्किल इम्तहानों में से एक इम्तहान है। तो जाहिर है कि अगर आपके बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छी तरह अच्छे नंबरों से और अच्छी मेरिट से नहीं आते हैं तो वो फिर आईएएस के इम्तहान में भी नहीं आ सकते हैं। सवाल तो ये है कि जो भी मुल्क के गरीब तबकात हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वर्नैक्युलर मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है उन बच्चों से कॉम्पीट करना जो बहुत कोचिंग करते हैं या बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं। और जाहिर है कि जो भी गरीब तबके हैं मुल्क के, उसमें मुस्लिम्स भी शामिल हैं और शेड्यूल कास्ट भी शामिल हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं, ओबीसी भी हैं और कुछ अपर कास्ट के बच्चे भी होंगे, तो उन बच्चों की स्कूलिंग मेयारी नहीं है तो वो बच्चे कम्पीट करने में मुश्किलात को फेस करेंगे।
जैसा आपने खुद कहा, अभी की हालिया सालों में इसमें कुछ बेहतरी आई है, मतलब मुसलमान जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो क्या रीजन है, मतलब कहाँ किस दिशा में कोशिश हो रही है, या जैसे सरकार भी क्लेम कर रही है कि वो स्कॉलरशिप देती है, उससे ये फर्क आया है?
देखिए ऐसा है कि एक तो अवेयरनेस बढ़ी है मुस्लिम्स में, ज्यादा बच्चे अब गवर्नमेंट सर्विस की तरफ ध्यान दे रहे हैं और कोचिंग वगैरह की तरफ आना चाहते हैं। और ये भी बात सही है कि जो यूजीसी ने कई यूनिवर्सिटीज में माइनॉरिटीज की कोचिंग के इंस्टीट्यूशन खोले हैं, उन्होंने भी रोल प्ले किया है, लेकिन अहम जो इसमें रोल है वो स्टूडेंट्स का खुद है।
इस वक्त बज चुके हैं सुबह के 6:54 और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा, नमस्कार भारत। कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या खास छपा है। नवीन नेगी अखबारों पर नजर दौड़ा चुके हैं, बताएं नवीन क्या है आज मुख्य सुर्खियां।
मानसी, आज दिल्ली से प्रकाशित तमाम अखबारों में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में हुई चुनावी रैली की खबरें छाई हुई हैं। दैनिक भास्कर ने मोदी के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल कर्नाटक के विकास पर बिना कागज पढ़े 15 मिनट बोलकर दिखाएं। अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 42 मिनट के भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि वे वंदे मातरम और देश के गौरव के बारे में नहीं जानते। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धर्मपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध होटलों को ढहाने गई टीम में शामिल महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शैलबाला नामक इस महिला अधिकारी को एक गेस्ट हाउस के मालिक ने कथित तौर पर गोली मारी और फिर वह फरार हो गया। अमर उजाला की तरफ नजर दौड़ाएं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को कानून के तहत बच्चों से यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई को तेज करने की बात कही है, इस खबर को छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट को दिशा निर्देश जारी कर ऐसे मामलों की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने की बात कही है। दैनिक भास्कर ने एक खबर चित्र के साथ प्रकाशित की है जिसमें लिखा है कि कोलकाता से मोरल पुलिसिंग का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां भीड़ ने एक जोड़े को इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बेहद पास खड़े थे और गले लग रहे थे। यह मामला कोलकाता के दमदम मेट्रो स्टेशन का है और मोबाइल से एक फोटो और वीडियो खींचा गया और ये काफ़ी वायरल भी हो रहा है जिसमें लोग इस जोड़े को लात घूंसे मार रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहर के रूप में बताया गया है। मुंबई को 4th स्थान दिया गया है। ये खबर प्रकाशित हुई है हिंदुस्तान टाइम्स में। और इसके अलावा एक और खबर जो जनसत्ता में प्रकाशित है कि अब हवाई सफ़र के दौरान यात्री मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे, इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
जी धन्यवाद नवीन। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीमों के कोच बदले जाने का दौर जारी है। हॉकी इंडिया ने एक बार फिर हैरानी भरा फैसला लेते हुए महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह को भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है, जबकि पुरुष टीम के कोच शोर्ड मारिन को राष्ट्रमंडल खेलों में खराब प्रदर्शन के बाद फिर से महिला टीम की बागडोर सौंप दी गई है। हरेंद्र 2009 से 2011 तक पहले भी भारतीय पुरुष टीम के कोच रह चुके हैं। हॉकी इंडिया के इस फैसले के बारे में पूर्व भारतीय कप्तान अशोक ध्यानचंद कहते हैं,
मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो टीम के अंदर एक अनसर्टेनिटी आ गई है हॉकी इंडिया में। इस वक्त आ रही है कि आने वाले टूर्नामेंट में हमारी हिंदुस्तान की टीम, भारत की टीम कैसा प्रदर्शन करेगी, और क्योंकि होम ग्राउंड के ऊपर वर्ल्ड कप होना है और हमारे पास अभी कई टूर्नामेंट मेजर टूर्नामेंट है, तो उसके मद्देनजर फेरबदल किया गया है।
वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम के रूप में बादशाहत बरकरार है। कल जारी हुई ताज़ा आईसीसी रैंकिंग में भारत सर्वाधिक 125 अंकों के साथ अपने शीर्ष स्थान पर मजबूत हो गया है। इसी के साथ भारतीय टीम को $10,00,000 की इनामी राशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं भारतीय निशानेबाज शहजाद रिजवी विश्व निशानेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँच गए हैं। रिजवी 1654 अंकों के साथ रूस के अर्टेम चेर्नोसोव को पीछे कर टॉप पर पहुँचे हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही,
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें इससे पहले एक बार फिर सुनते हैं समाचार नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। फेसबुक अपने यूजर्स को अब ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने की सुविधा देने जा रहा है। मंगलवार को फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने प्राइवेसी कंट्रोल पर नई योजनाओं की घोषणा की। आर्मेनिया में विपक्ष के नेता निकोल पाशियान ने प्रधानमंत्री चुनावों में मिली हार के बाद हड़ताल की घोषणा की है। सत्ता पर काबिज रिपब्लिकन पार्टी ने चुनावों में निकोल के विपक्ष में वोट डाला। मध्य अफ्रीका में एक चर्च पर हुए हमले में एक संत सहित 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमरीका के नए गृह मंत्री माइक पोम्पियो ने भरोसा दिलाया है कि वो देश के राजनयिक वर्ग को दोबारा पहले जैसे रुतबे में लाने की दिशा में काम करेंगे। मंगलवार को पोम्पियो का अपने दफ्तर में पहला दिन था। अमरीका में बॉर्डर के पास निगरानी करने वाले कुछ एजेंटों ने बताया है कि उन्हें एक बैग में बेहोशी की हालत में एक बाघ का बच्चा मिला है। यह बैग प्रवासियों का बताया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। तकनीकी खराबी के कारण फेसबुक पर आप तक हम कार्यक्रम नहीं पहुंचा पाए, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।